हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। झलक को अभी भी लग रहा था कि सिद्धार्थ शायद उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तब सिद्धार्थ ने बड़े ही ईजी तरीके से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम जाओ जहाँ तुम्हारा दिल करे, वहाँ जाकर चेक करवा सकती हो, ठीक है। जहाँ थोड़ी देर पहले झलक कह रही थी कि वो अपने पिता का इलाज के लिए दूसरा हॉस्पिटल बदल सकती है, लेकिन अब तो सिद्धार्थ की बात सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था और तुरंत ही बिना सोचे समझे वहाँ से बाहर की ओर चल पड़ी और अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर की ओर जाने लगी थी। रास्ते में उसे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि उसे यहाँ से मेडिकल किट खरीद लेनी चाहिए और फिर प्रेगनेंसी की जांच करनी चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, ये मेडिकल स्टोर भी ज़रूर सिद्धार्थ के अंडर में ही है, हो सकता है कि उसने इन्हें भी पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद करवा दिया हो, इसीलिए अचानक झलक ने अपना रास्ता मोड़ लिया था। जिस रास्ते से वो जाती थी वो मोड़ के उल्टी दिशा में जाने लगी थी और 10 से 15 किलोमीटर दूर सफ़र करने के बाद उसने अलग अलग मेडिकल स्टोर से कितनी ही सारी प्रेगनेंसी जांच करने की किट खरीद ली थी और सीधा अपने घर पहुंचकर उसने हर एक किट में से कम 15 से 20 किट में लगातार जाँच करना शुरू कर दिया था कि क्या वाकई वो प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन 10 मिनट के बाद अचानक बाथरूम में ही उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और वो तेज़ी से चीखते हुए बोली, सिद्धार्थ खुराना, ना ना ना, तुम राक्षस हो, तुम कमीने हो, सिद्धार्थ तुम कमीने हो। ये कहते कहते उसकी सिसकी निकलने लगी थी, क्योंकि जितनी भी कीट में उसने जाँच की थी सभी में ये बात साबित हो चुकी थी कि झलक प्रेग्नेंट है। अब तो झलक का दिल और दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक बार फिर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने इन सारी किट को भी झुटला दिया और सीधा सीधा एक छोटी सी क्लिनिक पर चली गई थी और वहां जाकर उसने अपनी जांच करवाई, लेकिन वहां पर भी यही परिणाम निकला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और जैसे तैसे वो खुद को समेटती हुई बाहर निकली और उल्टी सीधी सड़कों पर ही चलने लगी थी। वो इस वक्त पैदल चल रही थी। फिर जाकर वो एक बेंच पर बैठ गई और बिना किसी भाव के वो सामने की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो जम गई हों। उसे नहीं पता कि कितनी ही देर तक वो वहां बैठी रही। इस वक्त उसका दिल और दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसे बैठे हुए वहां तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हुआ था। तभी अचानक एक कार उसके ठीक सामने आकर रुकी और उसका दरवाज़ा खुला और उसमें से सीधा सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ता है। झलक के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत अजीब सी थी। झलक हालांकि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदसूरत बनाकर रखा करती थी, लेकिन आज तो उसकी ये हालत उसे और भी ज़्यादा बदसूरत बना रही थी। अब झलक को इतनी ज़्यादा निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ देखकर सिद्धार्थ के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो सीधा झलक के पास आकर बैठ गया था और उसकी ओर देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम्हें पता है पूरे के पूरे शहर भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं जो खुद को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार रहती हैं और उसके करीब आने के लिए अलग अलग तरह के दिमाग लगाती हैं और इसी उम्मीद में वो उसके करीब आना चाहती हैं कि शायद सिद्धार्थ खुराना का बच्चा वो पैदा कर पाए। लेकिन झलक को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कि उस पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। तभी सिद्धार्थ खुराना को मन में वो बात याद आ गई थी जब से झलक ने क्लब के रूम में उसे कहा था कि हर एक लड़की तुम्हारे पीछे तुम्हारे पैसों के पीछे है। तुम्हारे पीछे नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, तो तुम अपने परिवार को और अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। सिद्धार्थ ने झलक की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक कि तुम बच्चे को सही सलामत जन्म नहीं दे देती तब तक के लिए तुम क्लब में नौकरी छोड़ दो और तुम अपने पिता की चिंता मत करो, मैं उनका फ्री में अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाऊंगा। वो झलक को इस तरह से कह रहा था मानो कि वो इस वक्त झलक का मालिक है और झलक उसके गुलाम। जैसा वो कहेगा झलक वैसा ही करेगी। झलक की नजरें अभी भी थोड़ी सी झुकी हुई थी, लेकिन उसके उदास चेहरे पर किसी तरह की कोई भावना नहीं थी। तभी झलक ने गहरी लंबी सांस लेकर कहा, अगर मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूं और तुम्हारे इस बच्चे का यह अबॉर्शन करवा लूं, तो क्या तब भी तुम मेरे पिता का इलाज करवाओगे? अब जैसे ही झलक ने उस आदमी यानी सिद्धार्थ खुराना की ओर अपनी आंखें उठाकर ये सब कहा, इस वक्त उसकी आंखों में कितना ही सारा दर्द भरा हुआ था और वो सिद्धार्थ के जवाब का इंतजार कर रही थी कि सिद्धार्थ उसे क्या जवाब देता है। तब सिद्धार्थ झलक की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा चाहिए, और ये बच्चा मुझे क्यों चाहिए ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये बच्चा मुझे मेरी दादी के लिए चाहिए, समझी तुम? अच्छा चलो एक काम करते हैं, मिस झलक शर्मा, अगर तुम मुझे ये बच्चा सही सलामत पैदा करके दे देती हो तो मैं तुम्हारे पिता का इलाज तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ में ढेर सारा रुपया भी दूंगा। उसके बाद तुम्हें कभी भी किसी क्लब में या कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आसानी से अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकती हो। झलक बड़े ही ध्यान से सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी और अगले ही पल उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। झलक अच्छी तरह से जानती थी कि ओबेरॉय परिवार से टकराना उसके बस की बात नहीं है। भले ही उसने अपने पिता के एक्सीडेंट के लिए दूसरे डिटेक्टिव को हायर किया था, लेकिन वो समझ चुकी थी कि कोई भी ओबेरॉय परिवार के खिलाफ उसका साथ नहीं देगा। तो तभी झलक खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाते हुए बोली, मुझे आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए मिस्टर खुराना। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, सिद्धार्थ हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि जरूर झलक उससे बहुत ज्यादा अपनी मुंह मांगी कीमत लगाएगी या ये ज्यादा पैसे लेगी, लेकिन झलक तो उससे पैसे लेने से साफ साफ मना कर रही थी। तभी झलक आगे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, मुझे आपसे कुछ और चाहिए। अब तो सिद्धार्थ जो थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि झलक को उससे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसने ये बोला कि उसे कुछ और चाहिए, तो सिद्धार्थ समझ गया कि जरूर इसे कुछ न कुछ बड़ा चाहिए। और फिर वो झलक की ओर देखकर बोला, अच्छा बताइए मिस झलक शर्मा, आपको क्या चाहिए? सिद्धार्थ खुराना वादा करता है कि वो आपको जरूर प्रोवाइड करवाएगा। तब झलक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज से ठीक 6 महीने पहले मेरे पापा का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि वो कार एक्सीडेंट किसने करवाया था और क्यों करवाया था, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करके मुझे सारी डिटेल्स लाकर दें, ताकि मैं अपने पापा के गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकूं। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, सिद्धार्थ का तो मुंह पूरी तरह से उतर चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक उसे सिर्फ एक कार केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहेगी। अरे झलक चाहती तो उस बच्चे के बदले में ना जाने क्या क्या मांग सकती थी, लेकिन ये क्या, झलक तो यहाँ सीधे सीधे उसे सिर्फ एक केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही थी। फिलहाल सिद्धार्थ ने उसे बोला, ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तब तक मैं चाहता हूँ तब तक तुम खुराना विला में दादी के साथ रहो और इस बच्चे को वहीं पैदा करो। तब झलक ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मैं कुछ दिनों के बाद खुराना विला में रहने के लिए आ जाऊंगी, अभी फिलहाल मुझे अकेला रहना है। ये बोलकर झलक ने सिद्धार्थ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और सिद्धार्थ उसके पिता के एक्सीडेंट की जाँच करने का वादा देकर वहाँ से उठकर सीधा अपनी गाड़ी में जा बैठा था।
साथ ही साथ अभी भी उसके दिलों और दिमाग में झलक की कही हुई बातें गूंज रही थीं कि झलक को सिर्फ एक कार एक्सीडेंट की डिटेल्स चाहिए। कहीं ना कहीं झलक को पूरा यकीन था कि अगर उसके पापा पर हुए हमले का सबूत सिद्धार्थ उसे ढूंढकर ला देता है, तो वो आसानी से ओबेरॉय परिवार को सजा दिलवा देगी।